पृष्ठ संख्या 7, आत्महंता आस्था। सबसे पहले तो इस पुस्तक के उपयुक्त नामकरण के बारे में। शायद कुछ लोगों को भ्रम हो कि मैंने अपनी पुस्तक में निराला को आत्महंता सिद्ध करने की कोशिश की है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कला और रचना को लेकर मेरी एक व्यक्तिगत धारणा है। मुझे लगता है कि एक बार पूरी तौर पर रचना के प्रति अपने समर्पण के बाद व्यक्ति कोई भी दूसरी जिम्मेदारी सच्चे मायनों में और मुकम्मल तौर पर नहीं निभा सकता। वह कोशिश कर सकता है, वह एक संतुलन बनाए रखने का उत्कट प्रयत्न कर सकता है, लेकिन अक्सर वह अपने को इसमें असफल पाता है। इसके लिए उसे दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। कला रचना के प्रति एकांत समर्पण की अंतिम परिणति यही होती है। यह जीभ पर अपने ही खून का स्वाद लगने की तरह है। यह लगातार अनवरत निरंतर अपने को ही खाते रहना है। इस आत्म बुभुक्षा से सच्चे और मौलिक रचनाकार की कहीं कोई मुक्ति नहीं है। इसी में से वह सृजन के सघन छड़ों को रचना में मूर्त करता है। दरअसल सच्चा रचनाकार घनी सुनहली आयालों वाला एक सिंह होता है, जिसकी जीभ पर उसके स्वयं के भीतर निहित रचनात्मकता का खून लगा होता है। अपनी सिंह वृत्ति के कारण वह कभी भी इस खून का स्वाद नहीं भूलता और हर वक्त शिकार की ताक में सजग रहता है। चारों ओर से अपनी नजरें समेटे एकाग्रचित, आत्ममुख, एकाकी और कोलाहलपूर्ण शांति से जूझने और झपटने को तैयार। इसी तरह की एकाग्रचित्तता और आत्ममुखता में सिंह को मचान पर बैठे हुए शिकारी का ध्यान नहीं रहता। यहीं से एक भयंकर अपमान, यंत्रणा और दुखांत की सृष्टि होती है, जिससे वह अपनी सारी गर्जनाओं के बाद भी मुक्त नहीं हो पाता और मारा जाता है। महान और मौलिक कलाकारों का यही बिंब बार बार मेरे दिमाग में बनता है। कला के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण उसे बाहरी दुनिया से बेखबर कर देता है। वह इन दोनों दुनियाओं में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता। वह कोशिश करता है, जैसे सिंह भी कभी कभी मचान की ओर झपटता है, और निराला ने भी शायद बहुत पृष्ठ संख्या 8 कोशिश की होगी, लेकिन उनकी सघन आत्ममुखता इसमें बाधक होती है। इस तरह यह एकांत समर्पण एक प्रकार का आत्मभोज होता है। कला रचना के प्रति यह अनंत आस्था एक प्रकार से आत्महनन का पर्याय होती है, जिससे किसी मौलिक रचनाकार की मुक्ति नहीं है। जो जितना ही अपने को खाता जाता है, बाहर उतना ही रचता जाता है, लेकिन दुनियावी तौर पर वह धीरे धीरे विनष्ट, समाप्त, तिरोहित तो होता ही चलता है। महान और मौलिक सर्जना के लिए यह आत्मबल शायद अनिवार्य है। इन्हीं अर्थों में मैंने निराला के संपूर्ण रचना जीवन को आत्महंता आस्था की संज्ञा दी है। मेरी इस धारणा को समझकर ही इस पुस्तक के साथ न्याय किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि निराला की रचनाओं के प्रति मैं क्यों कर धीरे धीरे आकर्षित होता गया, लेकिन पिछले 12 वर्षों से लगातार मैं उन्हें डूब कर पढ़ता रहा। मेरा विचार उनके ऊपर कभी भी कोई पुस्तक लिखने का नहीं था। कविताएं पढ़ते वक्त मैं सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए नोट्स लेता गया, पहले तो किताबों के हाशिए पर, फिर एक नोटबुक में। धीरे धीरे लगभग वह पूरी ही भर गई। उसमें मात्र मैं अपने आनंद के मूक क्षणों को लिपिबद्ध कर लेता था। एक लेखक होने के नाते मैंने उसमें सच्चे और मौलिक लेखन की नियति को पहचाना। अपने खुद को जानने समझने में मुझे मदद मिली। सच यह है कि निराला की जीवनी से भी अधिक मौलिक और शाश्वत कला रचना के प्रतीक निराला को उनकी रचनाओं से ही समझा जा सकता है। अगर उनका जाना हुआ जीवन हमारी आँखों से तिरोहित भी हो जाए, तब भी गुफा के अंधेरे में बैठी हुई उनकी सिंह वृत्ति जलती हुई आँखों से एकटक बाहर की ओर घूरती है। यह पुस्तक मेरे उन्हीं नोट्स का क्रमबद्ध रूपांतरण है, अपने निजी आनंद की अभिव्यक्ति है। लेकिन एक बात यहाँ साफ कह देना जरूरी है, आनंद की मेरी यह अभिव्यक्ति श्रद्धा विगलित क्षणों की उपज ना होकर मेरे दिमाग की तार्किक रससिद्धि का परिणाम है। मेरे सधे हुए सुर की अभिव्यक्ति है, अतः उसमें एक तर्कपूर्ण निजी शास्त्रीयता भी है, इसलिए वह मात्र प्रशस्ति वाचन या निंदा नहीं है, बल्कि निराला की रचनाओं तक पहुँचने के लिए बनाया गया एक निजी और नया द्वार भी है, जिससे पाठक एक नए सिरे से, एक नई जगह से उस सिंह का दर्शन कर सके। इसलिए इस पूरी पुस्तक में एक तार्किक और सघन तह दर तह शिल्प भी है। इसी रूप में यह एक नया मूल्यांकन है। निराला की रचनाओं पर सही कोणों से अभी बहुत कम काम हुआ है, लेकिन वह तभी संभव होगा जब विद्वद वर्ग उनकी रचना के अध्ययन के लिए नई शास्त्रीयता की तलाश करें। पृष्ठ संख्या 9। यह पुस्तक उसी नई शास्त्रीयता की तलाश की ओर एक कदम है। यह तलाश वैसे कठिन बहुत है, लेकिन असंभव नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर निराला की रचनात्मकता के प्रति न्याय संभव न होगा। केवल एक नीरस गुमराह करने वाली, अरुचि पैदा करने वाली पिष्ट पेषणता होगी, जिससे कोई फायदा न होगा। इस पिष्ट पेषणता, श्रद्धा अवज्ञेयता और निर्बुद्धि का उदाहरण निराला पर लिखी गई अनेक पुस्तकें हैं, जिनकी चर्चा यहाँ बेकार है। वैसे निराला की रचनात्मकता का गहरा और सम्यक अध्ययन करने वालों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। हाँ, अपने नोट्स को क्रमबद्ध करने और उन्हें प्रकाशित करवाने में जिन लोगों की मुख्य प्रेरणा ब्रैकेट में डॉक्टर रघुवंश, श्री वाचस्पति पाठक, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और नीलाभ ब्रैकेट बंद रही, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा न दी होती तो मैं अपने आलस्य में इस किताब को अपने निजी नोटबुक तक ही सीमित रखता। बस 13 अगस्त 1972, इलाहाबाद, दूधना सिंह।